आज है 4 दिसंबर दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। कैलिफोर्निया में हमला करने वाली महिलाओं को मिला था पाकिस्तान से वीजा। बाढ़ से जूझ रहे चेन्नई के आईसीयू में बिजली की सप्लाई कटने से 14 लोगों की मौत। अस्पताल के अधिकारियों ने दी अपनी दलील।
That is a separately we'll have to verify the causes, but all of them were highly critical patients from various.
और आज विवेचना में बात करेंगे गजल गायक जगजीत सिंह के संगीत के सफर की।
उनकी कंपोजिशन जो वो करते थे, he used to do it so smartly. अंतरा का जो कंपोजिशन वो करते थे, जो मेरे लिए छोड़ देते थे कि ये तुम गाओ, those used to be ऊंचे सुर में और जो नीचे के सुर के थे वो गाते थे।
लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद चेन्नई में एक अस्पताल में 3 दिनों में 14 मरीजों की मौत के जांच के आदेश दिए गए हैं। चेन्नई भयंकर बाढ़ की चपेट में है, जिससे ये अस्पताल भी प्रभावित हुआ है। जिन मरीजों की मौत हुई है, उनके परिवार वालों का कहना है कि बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से वेंटिलेटरों ने काम करना बंद कर दिया था। चेन्नई में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि बारिश थमने के बाद चेन्नई में पानी का स्तर कम होने लगा है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जर्मनी की संसद में सीरिया में सक्रिय चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट पर सैन्य कार्रवाई के प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी मिल गई है। जर्मनी टॉर्नेडो हवाई जहाज, नौसेना का एक पोत और 1200 सैनिक सीरिया भेजेगा, जो कि सीधे लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। जर्मन सांसद रॉड्रिक कैसेवेटर ने बीबीसी को बताया कि इसके बाद अन्य अरब देशों में भी इस्लामिक स्टेट से निपटने के लिए कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।
ये
अभी शुरुआत है और आगे की योजना के लिए पहला कदम है। जॉर्डन, लेबनान और लीबिया में आईएसआईएस से लड़ने की भी योजना बनानी होगी, तो ये जर्मनी के लिए एक लंबा कार्यक्रम होगा। ये थे जर्मन सांसद रॉड्रिक कैसेवेटर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि सीरिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता पर रहते हुए सीरियाई सरकार और विद्रोही गुट सहयोग कर सकते हैं। जॉन कैरी ने कहा कि अगर बशर अल असद के भविष्य को लेकर स्थिति साफ हो तो विद्रोही सहयोग के लिए तैयार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि ये एक मुश्किल कदम है, क्योंकि इससे संकेत जाएंगे कि असद सत्ता का अतिक्रमण कर रहे हैं, जो कि अन्य पक्षों के लिए स्वीकार्य नहीं है। सीरिया और इराक में सक्रिय चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कथित तौर पर 6 बच्चे बंधकों का कत्ल करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में 6 बच्चे पूर्वी सीरिया में अल अरहबा के खंडर बन चुके किले में सीरियाई सेना के बंधकों का कत्ल करते दिख रहे हैं। वीडियो में कथित तौर पर ये बच्चे एक खंडहर में बंधकों की तलाश में दौड़ते नजर आ रहे हैं और बंधकों के हाथ बंधे हुए दिखाए गए हैं और हर बच्चा एक बंधक की हत्या करता दिखाया गया है। मिस्र से मिल रही खबरों के अनुसार राजधानी काहिरा में एक रेस्तरां में बम फेंकने की घटना में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार ये घटना शहर के अगोजा इलाके में हुई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमेरिका से। कैलिफोर्निया के हमले में शामिल तशफीन मलिक को अमेरिका का वीज़ा पाकिस्तान से मिला था और वो पाकिस्तानी नागरिक थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टोनर ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही। कैलिफोर्निया में बुधवार को हमला हुआ था और इस हमले में 14 लोग मारे गए थे, जबकि 21 घायल हुए थे। सीधे चलते हैं वॉशिंगटन बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, इस बारे में क्या जानकारी है?
देखिए, पुलिस ने कल जाकर के ये बात जानकारी सामने रखी कि सैयद रिजवान अख्तर और तशफीन मलिक, जो संदिग्ध हमलावर जोड़ा है, इनका एक आप कह सकती हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुक है, क्योंकि सैयद रिजवान अख्तर, उनकी पैदाइश यहाँ पर शिकागो में हुई थी और उनके माता पिता पाकिस्तानी मूल के हैं। वहीं तशफीन मलिक से उनकी शादी हुई है कुछ ही समय पहले एक डेटिंग साइट के जरिए जब वो सऊदी अरब में थी, और उन्होंने अमेरिका आने का जो वीजा था वो पाकिस्तान से अप्लाई किया था, जो एक यहाँ कहते हैं फियांसे वीजा, जिसके तहत आप इस देश में आ सकते हैं और 90 दिन के अंदर उन्हें अगर वो शादी नहीं करती उनसे तो उन्हें देश छोड़ना पड़ता। लेकिन उसके बाद इनकी शादी हुई है और फिर इनकी एक 6 महीने की बच्ची भी है। पुलिस के सामने अभी जो सबसे बड़ी बात है वो तलाश रहे हैं कि इसका मकसद क्या था, इस हमले का। वो इसको कानूनी तौर पर आतंकवाद नहीं कह रहे हैं, ना ही वो ये कह रहे हैं कि ये जो दफ्तर में जो आपसी झगड़े होते हैं जिसके बारे में शुरू में शक था कि क्या उस वजह से ये हमला हुआ, क्योंकि इसका जो पैमाना था, जो स्केल था, वो बहुत बड़ा है। कि पुलिस का ये कहना है कि जब अगर आपका कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है तो आप इस तरह की तैयारी नहीं करते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर किसी हमला करने के लिए। उनके जो घर की तलाशी ली गई है उसमें 12 पाइप बॉम्ब्स जिसको बोलते हैं वो बरामद हुए हैं
जी।
जहां पर हमला हुआ वहां 3 पाइप बॉम्ब्स को जोड़कर रखा गया था लेकिन वो फटे नहीं, उनको फिर बाद में डिफ्यूज किया गया। तो ये सब दिखा रहे हैं पुलिस को कि एक तरह से योजनाबद्ध तरीके से कुछ सोच चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि हो सकता है कि उस वक्त जो कुछ झगड़ा हुआ ऑफिस में वो उसने एक ट्रिगर का काम किया और जिसके बाद ये सारा हादसा हुआ, ये सारी घटना हुई।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे वॉशिंगटन से BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। और अब रुक करते हैं भारत के तमिलनाडु राज्य का। बाढ़ से जूझ रहे चेन्नई शहर में पिछले 3 दिनों में इंसेंटिव केयर यूनिट में भर्ती 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि शहर के कई भागों में बिजली की सप्लाई कट जाने की वजह से इन लोगों की मौत हुई। किसी दुर्घटना की आशंका के चलते बिजली की सप्लाई काटी गई थी। हालांकि अधिकारी इस बात को खारिज कर रहे हैं कि ये मौत बिजली की सप्लाई कट जाने की वजह से हुई है। एक रिपोर्ट से बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
भारी बरसात और उसके चलते आई बाढ़ ने चेन्नई में चातुर्फा तबाही मचाई है। हर तरफ बारिश का पानी भर जाने के चलते सरकार ने बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी थी और इसी बीच पिछले 3 दिन में बिजली ना होने से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 14 मरीजों की मौत हो गई। तमिलनाडु सरकार के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन कहते हैं,
बारिश का पानी हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर में चला गया था। जिन मरीजों की मौत हुई है वो इन 3 दिनों में हुई है। अन्य 57 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा गया है। जिन लोगों की मौत हुई है वे सारे ही बहुत गंभीर हालत में थे।
लेकिन राधाकृष्णन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार इस बात की भी जांच करेगी कि मरीजों की मौत पावर सप्लाई बंद होने से हुई है या नहीं। उधर दूसरी तरफ चेन्नई निवासियों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। लोग चाहे जितनी भी मुश्किल में हो जब मौका मिलता है तो कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं। 4 दिन पहले दूध का दाम 40 रुपये लीटर था। 3 दिन बाद जब लोग 8 सुबह घर के बाहर निकल सके तो दूध का दाम 100 रुपये लीटर हो गया था। चेन्नई में रहने वाली वसंती कहती हैं,
हमारे छोटे से घर के पास दूध 90 रुपए से 100 रुपए लीटर तक बेचा जा रहा है। यहाँ 2 फीट तक पानी भरा हुआ है, उसी में हमें बाहर निकलना पड़ा। काम पर गए हुए 4 दिन हो गए हैं।
वसंती ये भी कहती हैं कि वे जिस अपार्टमेंट में काम करती हैं वहाँ का वॉचमैन भी एक प्याला चाय के लिए 40 रुपए चुका रहा है। वसंती की हालत बहुत सारे लोगों से बेहतर है। धनप्रकाश एक फैक्ट्री के कर्मचारी हैं जिनका सारा खानदान एक रिलीफ कैंप में आश्रय लेने को मजबूर हो गया है।
हमारे घर में तकरीबन 5 फीट पानी भर गया था तो सरकार ने हमारे परिवार को पेरम्बूर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में आश्रय दिया है। यहाँ लगभग 300 से लेकर 400 परिवार तक हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे परिवार यहाँ आश्रय लेने के लिए आ रहे हैं।
ऐसा लगता है कि मौके का फायदा उठाने वाले लोगों की कमी नहीं है। तमिल फिल्मों में छोटे रोल करने वाले तारा सिंह कहते हैं,
आउटी साइड मिल रहा है लेकिन ना सिटी साइड पूरी तरह से ना खराब है। वहाँ तो खाने के लिए भी रहने के लिए जगह नहीं है। वहाँ पे ये बोटिंग तो छोड़ रहे हैं लेकिन है ना बूस्ट के भी पैसे है ना ले रहे हैं वो लोग 100 रुपीज पर हेड, तो 100 रुपए में वही रेस्क्यू करके छोड़ देते हैं बस।
मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक बारिश फिर से लगातार चलनी है। पिछले 1 महीने में मौसम ने ऐसा खेल खेला है कि चेन्नई के निवासी असमंजस में फंसे हुए हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
इस बीच चेन्नई के कई भागों में पानी का स्तर नीचे आया है। आज दोपहर में सूरज और बारिश आंख मिचोली खेलते रहे। अब लोग अपनी जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ चेन्नई से रविन्द्र बावा।
चेन्नई के सीआईटी नगर थर्ड मेन रोड में आज नज़ारा कुछ अलग ही है। इस सड़क पर आते ही, इस कॉलोनी में घुसते ही आपको ये नज़र आएगा कि सड़क पर लोगों ने अपनी वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल, कंप्यूटर, फ्रिज सब सड़कों पर निकाल के रख दिया है धूप में सूखने के लिए। सूरज की किरण निकलते ही यहाँ लोगों ने अपनी ज़िंदगी समेटना शुरू कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ हैं श्रीधर जी, बताएंगे कि हम उनके घर में आए हैं क्योंकि यहाँ सफाई का अभियान चल रहा है घर में। Yes. आपके घर में क्या हुआ, मुझे ज़रा दिखाएं अपने घर में क्या स्थिति है, क्या क्या नुकसान हुआ है।
अब मेरा घर में अभी वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब नाचे सती नाचे, वो तो फेंक देना पड़ेगा मैडम। और दूसरा सोफा सेट पूरा, उसके साथ कुर्सी है, सब बाहर से फेंक देना पड़ेगा मैडम, कुछ फ़ायदा नहीं है, सारा डैमेज हो गया मैडम।
तो ये स्थिति है इस सीआईटी नगर की, हर घर में यही हाल है। लोग अपने घर में सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और धूप के निकलते ही, बरसात के रुकते ही यहाँ ज़िंदगी समेटने का काम शुरू हुआ है। चेन्नई की सड़कों पर भी इसी तरह का नज़ारा है, जहाँ ट्रैफिक आज ज़्यादा है, पेट्रोल पंप में बहुत ज़्यादा भीड़ है और ज़रूरी सामग्री जुटाने की कोशिशें हो रही हैं।
मिल्क एंड ऑल इज़ वेरी कॉस्टली है,
दूध और उसके अलावा भी सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। आधा लीटर दूध 50 से लेकर 70 रुपए तक में मिल रहा है।
हर तरफ खाने पीने के सामान की बेहद कमी हो गई है। बारिश की वजह से गोदामों में भी पानी भर गया है, जिससे सामान बर्बाद हुआ है।
अडियार नदी के किनारे खड़े होने पे ही पता चलता है कि नदी का बहाव या पहाड़ के पानी का बहाव कितना तेज है और कितनी जोर की यहाँ बारिश हुई होगी। इस नदी के में बह रहे इस वक्त कई तरह के सामान हमें नज़र आ रहे हैं, कुर्सी है, एक चप्पल है, पेड़ों की डालियाँ हैं, कपड़े हैं और बोतलें हैं, हर तरह की चीज़ इस बाढ़ के पानी में बहती हुई नज़र आ रही है। और जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ वो एकार तांगल ब्रिज के नीचे की एक सड़क है जो यहाँ से काशी थिएटर की ओर जाती थी, पर इस वक्त उस सड़क का नामो निशान नहीं है। बाढ़ के पानी ने उसे पूरी तरह से ढक लिया है और बाढ़ के पानी में वो सड़क अब नज़र नहीं आ रही। हालांकि नदी के बहाव में तब्दीली नहीं आई है, लेकिन शहर के कई इलाकों में पानी उतरने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में फिर बारिश हो सकती है और बादल अब भी चेन्नई पर मंडरा रहे हैं, लेकिन लोग प्रार्थनाओं के सहारे इस विपदा को टालने में जुट गए हैं।
तो तमिलनाडु में बादल फिर घिराए हैं और मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी। हमारी सहयोगी रविंद्र बाबा ने चेन्नई में राहत का काम कर रहे एनडीआरएफ के डीआईजी एसएस गुलेरिया से ताज़ा हालात पर बातचीत की।
अभी ये है कि एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, जिसमें 35 टीमें हमने तमिलनाडु में फ्लड में यहाँ पे डिप्लाई की थी, उसमें 22 टीमें सिर्फ चेन्नई में थी क्योंकि चेन्नई के बहुत से हिस्सों में फ्लड का प्रभाव था, लेकिन जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो सारे ओवर हो चुके हैं। आज फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं जगह जगह, अगर किसी को किसी किस्म की जरूरत है तो हम उनकी मदद करें, लेकिन देखने में ये आया है अभी जो हम देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर कि लोगों को कुछ जगह पानी का प्रॉब्लम है या कुछ जगह खाने का प्रॉब्लम है, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक और प्रॉब्लम है जो कि इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन कम्युनिकेशन जो है दैट इज नॉट रिस्टोर्ड, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेलीफोन कॉल आते हैं, जो लोग बाहर विदेशों में हैं या चेन्नई के बाहर में हैं वो बार बार फ़ोन करके पता करने की कोशिश करते हैं कि उनके घर में जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर के सदस्य हैं, वो सुरक्षित हैं या नहीं हैं। इस तरह की समस्याएं हैं अभी हैं, और प्रायोरिटी अगर आप देखें तो इस समय लोगों को दवाई, खाना, पानी, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं, और साथ में जो रिक्वायरमेंट इस टाइम की है कि कोई बीमारी ना फैले उसके लिए लोकल अथॉरिटी जो है वो लगी हुई हैं, और कोई डिसइंफेक्टेंट या इस इलाके में कोई बीमारियाँ ना फैलें, गंदगी जो है उसकी सफाई की जाए, वो प्रायोरिटी इस समय की है सबसे ज़्यादा।
ये थे एनडीआरएफ के डीआईजी एसएस गुलेरिया जो बता रहे थे कि दवा और खाने की कमी को पूरा किया जा रहा है और प्रभावित इलाकों में बीमारियां ना फैले उसका भी ध्यान रखा जा रहा है।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या नेपाल संकट के लिए भारत जिम्मेदार है? भारत से नेपाल जाने वाले सामान की सप्लाई महीनों से बंद है। नेपाल के लोग अनाज, पेट्रोल और दवाओं के लिए तरस रहे हैं। वो कहते हैं भारत जानबूझकर ब्लॉकेट कर रहा है, पर भारत इसका खंडन करता रहा है। आपकी क्या राय है? क्या वाकई नेपाल को सजा दे रहा है भारत? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में इसी विषय पर बातचीत होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब विवेचना। غزلوں کو محفلوں اور درباروں کا گائیکی کی چھوی سے عام جن مانس کا حصہ بنانے کا شرے اگر کسی کو دیا جا سکتا ہے تو وہ ہے جگجیت سنگھ۔ حال ہی میں ستیا سرن کی ایک کتاب پرکاشت ہوئی ہے بات نکلے گی تو پھر، جس میں ان کے راجستھان کو ایک چھوٹے سے شہر سے غزل گائیکی کے سرمور بننے کی کہانی کو دلچسپ طریقے سے بتایا گیا ہے۔ آج کی ویوچنا میں ریحان فضل نظر ڈال رہے ہیں جگجیت سنگھ کے سنگیت سفر پر۔
سرکتے جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ، نکلتا رہا ہے نکلتا رہا ہے آفتہ آہستہ۔
جگجیت سنگھ کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے کہ جب وہ جالندھر کے ڈی اے وی کالج میں پڑھا کرتے تھے تو ہاسٹل میں رہنے والے چھاتر ان کے بغل کے کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ جگجیت صبح 5 بجے اٹھ کر ہی 2 گھنٹے کا ریاض شروع کر دیتے تھے۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ آل انڈیا ریڈیو کے جالندھر اسٹیشن پر جگجیت سنگھ کو اپ شاستری گائن کی شیلی میں فیل کر دیا گیا تھا، جبکہ شاستری شیلی گائن میں انہیں بی شرینی کا درجہ دیا گیا تھا۔ ایک بار جگجیت سنگھ اور مشہور نردیشک سبھاش کھئی ایک انترراجی اتسو میں بھاگ لینے بنگلور گئے تھے۔ جگجیت سنگھ پر کتاب لکھنے والی ستیا سرن بتاتی ہیں۔
بھائی صاحب آتے تھے ڈرامیٹکس میں اور جگجیت جی جاتے تھے کلاسیکل میوزک میں، تو بنگلور گئے تھے اور دونوں ساتھ میں تھے اپنے اپنے کالجز کے لیے، تو اناؤنس کیا گیا کہ ابھی جگجیت سنگھ آئیں گے اور وہ کلاسیکل گائیں گے، اور جب انہوں نے دیکھا جگجیت کو آڈینس میں دیکھا، وہ سردار تھے تب، تو پگڑی وگڑی باندھ کے جب آئے تو آڈینس ہنسنے لگی کہ یہ تو بھنگڑا گانا چاہیے اس کو، یہ کیا کلاسیکل گا رہا ہے۔ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بالکل ہی واز ناٹ ایٹ آل پرٹربڈ، وہ بس آنکھ بند کر کے آلاپ گاتے رہے اور آڈینس چپ ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنا سر لگایا اور ہی اسٹارٹڈ سنگنگ دا کلاسیکل راگا، اور بالکل آڈینس چپ رہی، اور اس کے بعد تالیاں جو بجنے لگی تو 5-5 منٹ میں تالیاں بجنے لگی اور آڈینس بہت خوش ہوئی، اور گھائی صاحب بولتے کہ میرے آنکھ میں تو آنسو بھر آئے۔
پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے، نئے پرندوں کو اڑنے وقت تو لگتا ہے۔
1965 میں جگجیت سنگھ ممبئی پہنچے تھے جہاں ان کی ملاقات چترا سنگھ سے ہوئی تھی۔ اس سمے وہ شادی شدہ تھی اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ جب انہوں نے پہلی بار جگجیت سنگھ کو دیکھا تو انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ اتنی کسی ہوئی پینٹ پہنے ہوئے تھے کہ انہیں چلنے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے چترا کے ساتھ ان کی دوستی بڑھی اور دونوں نے ساتھ گانا شروع کر دیا۔ جگجیت نے ہی چترا کو سر سادھنے، اچارن اور آروہ اوروہ کی کلا سکھائی۔
میں ان سے سیکھنے رہی تھی، وہ ہمارے دوست بن گئے تھے، اور ہم ان کے گانے، ان کی آواز، ان کے کمپوزیشنز مینلی بہت اپریشیٹ کرنے۔ مجھے ایکچولی آئی ایم فرام بنگال، میں بنگالی ہوں، تو مجھے اردو کے ساتھ کوئی بالکل کچھ بھی نہیں تھا ناتا، تو ان کے گانے کے تھرو میں آئی اسٹارٹڈ لسننگ ٹو۔ اس کے پہلے تو طلعت محمود کو سنتے تھے، وہ بھی سنتے تھے طلعت محمود کو چھوٹے میں، ہم لوگ جب چھوٹے تھے۔ گانے تو مجھے آتا تھا گانا، لیکن ان کے کمپوزیشنز گانا اور ویسے گانا گانا زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بعد میں بھی ہم نے اور آرٹسٹوں کے تھرو میں بھی دیکھا کہ آپ محمد رفیع کو کاپی کر لو گے، منا دے کو کاپی کر لو گے، مکیش کو کاپی کر لو گے، لیکن جگجیت سنگھ کو کاپی کرنا از امپاسبل۔ اس وقت جو ہم نے ان کے گانے گانے کے لیے جب بیٹھے تو وہ جو کریکشن کراتے تھے مجھے، دیٹ یوز ٹو بی مائی ٹریننگ وتھ ہم۔ میری ایک عادت تھی کہ جو بھی میں گاؤں اس کی پوری میننگ مجھے سمجھانا پڑتا تھا ان کو، پہلے لینگویج کیا ہے، کس شبد کا کیا میننگ ہے، اونلی دین اس کا ایکسپریشن پراپر آتا تھا، تو میں سمجھ کے پھر گانا شروع کرتی تھی۔ انہوں نے میری آواز کی جو کریکٹرسٹک ہوا کرتا تھا اس کو سمجھ کے انہوں نے میرے لائق کمپوزیشن بنانا شروع کیا۔
ہوتی ہے یہ حقیقت۔
चित्रा की आवाज महीन और ऊंचे स्वर वाली थी, जबकि जगजीत की आवाज भारी थी। वो किसी गाने को आगे बढ़ा सकते थे और जरूरत पड़ने पर उसे 40-45 मिनट तक खींच भी सकते थे, जबकि चित्रा ऐसा नहीं कर पाती थी।
हमारे दोनों की जो आवाजें थी वो कैरेक्टरिस्टिकली देवर कम्प्लीटली डिफरेंट, मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। मेरी आवाज चंचल थी, पतली सी थी, और उन दिनों बीइंग दैट यंग और भी पतली आवाज थी, और इनकी भी पतली थी। बाद में जो धीरे धीरे एज हिज वॉइस मैच्योर्ड विद एज, तो उनकी कंपोजिशन जो वो करते थे, ही यूज्ड टू डू इट सो स्मार्टली कि ऊंची लाइनें या अंतरा का जो कंपोजिशन वो करते थे, जो मेरे लिए छोड़ देते थे कि ये तुम गाओ, दोज यूज्ड टू बी ऊंचे सुर में, और जो नीचे के सुर के थे वो गाते थे। तो आई थिंक ये जो एक कॉम्बिनेशन हमारी आवाज की थी विद अ टोटल कॉन्ट्रास्ट, दैट इज व्हाट अपील्स टू पीपल। जोड़ियों में गाना उन दिनों होता ही नहीं था। आई थिंक वी वर प्रोबेबली इफ नॉट द वेरी फर्स्ट बट द फर्स्ट सक्सेसफुल जोड़ी, जो कि पढ़े लिखे भी थे और गाने जो थे ऐसे ही था, मिसमैच्ड आवाज, लेकिन उसको इस तरह से मैच किया जाता था कि किसी को समझ ही नहीं आता था कि कैसे ये इतना ऊंचा और इतना नीचा कैसे साथ में हो रहा है। जिस रिकॉर्ड ने उनकी पहचान पहली बार बनाई वो था अनफॉरगेटेबल्स। उस वर्ष ये रिकॉर्ड किसी भी फिल्मी रिकॉर्ड से ज्यादा बिका।
76 में हमारा पहला एलपी जो है लॉन्ग प्ले, जिसमें 8 या 10 थी शायद, द अनफॉरगेटेबल्स, वो रिलीज हुआ, तो वो हमारी सबसे बड़ी फर्स्ट माइलस्टोन कहना चाहिए उसको, जो अभी तक पॉपुलर है। उसकी गजलें भी पॉपुलर है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी उसमें है, और बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं।
'79 में उनका रिकॉर्ड कम अलाइव आया। इसमें कई चीजें नई थी, मसलन कॉन्सर्ट की लाइव रिकॉर्डिंग, गजल सुनाते सुनाते जगजीत की सुनने वालों से बातचीत, और बीच बीच में चुटकुले। जगजीत सिंह के छोटे भाई करतार सिंह याद करते हैं,
मैंने जब भी उनसे बात करी कि आप जोक को सुनाते हो स्टेज, तो कह रहे यार कनेक्ट करना होता है ऑडियंस के साथ, सिर्फ गाने से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, उनको रिलीफ भी मिलना चाहिए। अब हैवी गजल सुनाने के बाद सबके सब रोने लग जाएं महफिल में या ऑडियंस में, उसके बाद उनको वापस उसी मोल्ड में लाना है, तो एक आध जोक हो जाए बीच में, एक लाइट गजल हो जाए, तो ये सारा जो ऑडियंस के साथ उनकी केमिस्ट्री थी, जो रेपो बनाते थे, जो कनेक्ट होता था, ये उसका एक हिस्सा था। ये उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि यार ये ऑडियंस जो है ना, इनको साथ लेके चलना।
तुमने गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं।
उसके बाद आया गुलजार का टेलीविजन पर मिर्जा गालिब सीरियल। गुलजार ने संगीत और गाने की जिम्मेदारी जगजीत सिंह पर छोड़ी। जगजीत के सामने चुनौती थी कि तलत से लेकर लता, बेगम अख्तर, मेहंदी हसन और सुरैया तक ने खालिब को गाया था, उनको उन सब से अलग होना था। जगजीत ने इस एल्बम के साथ इतिहास रच दिया।
गुलजार और जगजीत दोनों बहुत ही ब्राइट पीपल हैं, जीनियस टाइप पीपल हैं, दोनों बहुत ही क्रिएटिव हैं, दे आर अनपैरेलल्ड इन देयर फील्ड्स, दे आर पाथ ब्रेकर्स, ट्रेल ब्लेजर्स, बट थोड़ा सा कंपटीशन भी है उनमें। तो ये बात रही कि एज क्रिएटिव आर्टिस्ट उनमें एक सिनर्जी थी, एक दूसरे को बढ़ाते जाते थे। पर्सनली पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया अभी तक कि वो फ्रेंड्स थे पर्सनली कि नहीं, और ये बात मुझे इसीलिए लग रहा है क्योंकि मिर्जा गालिब के टाइम जब गुलजार साहब कहते हैं जब मैंने मिर्जा गालिब उठाया कि इस पे सीरियल बनाना है इनके लाइफ के ऊपर, तो मुझे एक ही नाम सामने आया, वो था जगजीत का। बट जगजीत के साथ उनका बहुत ही टक्कर होने लगा क्योंकि गुलजार इज वेरी स्ट्रिक्ट। ही सेड अगर आप म्यूजिक बनाओगे तो उसमें वो ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज करोगे जो उस समय यूज किए जाते थे, आपके मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है। और जगजीत ने कहा कि अरे इसके बिना तो ये सब नंगा है, ही एक्चुअली यूज द वर्ड नंगा है, क्या करूं कैसे बनाऊं। पर ये देखिए कि दोनों की क्रिएटिव एनर्जीज इतने स्ट्रांग थे कि वो जो म्यूजिक है वो मेरे ख्याल से जगजीत जी के सबसे बढ़िया म्यूजिक है। उसमें मिठास भी है, अलग अलग मूड जो बनाना है वो बन जाते हैं और वही इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जो गुलजार साहब चाहते थे।
हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो के ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
1999 में जब जगजीत पाकिस्तान गए तो राष्ट्रपति मुशर्रफ के घर भी गए जहां दोनों ने साथ साथ पंजाबी गीत गाए और मुशर्रफ ने उनके साथ तबला भी बजाया। उसी ट्रिप में जब वो PIA के विमान से वापस दिल्ली आ रहे थे तो पायलट ने विमान की लैंडिंग में देरी कर दी।
जैसा मुझे उन्होंने बताया कि ऐसे उनको पता चला क्रू को कि जिगी साहब हैं फ्लाइट में, तो उनकी कंपनी को और प्रोलोंग करने के लिए उन्होंने कुछ नीचे कॉन्टेक्ट करा कंट्रोल को कि ऐसे ऐसे है कुछ हमारे साथ एक VIP हैं तो हम थोड़ा 10 मिनट ज्यादा लेंगे, तो ऐसे कुछ फ्लाइट को उन्होंने डिले कर दिया थोड़ा सा, ऊपर ही घुमाया, उनके साथ बातें बातें करी, मेरे ख्याल गाना वाना भी सुना होगा, बहुत पॉपुलर थे पाकिस्तान में। तो
एक बार PPC ने जगजीत सिंह से पूछा था कि संगीत के अलावा आपका दूसरा सबसे बड़ा शौक कौन सा है, तो जगजीत ने छूटते ही जवाब दिया था,
म्यूजिक के अलावा आई एम ए गैम्बलर, बॉर्न गैम्बलर, आई गैम्बल, आई ओन हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस है मेरे 5-6, तो गैम्बल इज इन माय ब्लड। रेस कोर्स में जब हम जाते हैं तो म्यूजिक भूल जाते हैं, वहां सिर्फ घोड़ों की बातें होती हैं, रेस की बातें होती हैं, तो एक ब्रेक मिलता है।
लेकिन घुड़दौड़ के शौक की वजह से एक बार उनकी आवाज बुरी तरह बैठ गई और उसको वापस आने में 4 महीने लग गए।
वो तो बहुत एक्साइटेड हो गए और उनका घोड़ा जो था वो जीतने से लगा हुआ था, तो वो चिल्लाते गए और गई उनकी आवाज उसके बाद, तो मेरे ख्याल से 6 महीने उनको काफी तकलीफ हुई उसके बाद। और लता जी ने उनको हेल्प किया कि ये एक ऐसी दवाई है, इसको लेने से मेरी भी आवाज एक बार चली गई थी और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, तो आप ले लो।
जावेद अख्तर ने उनके बारे में कहा था कि वो गजल गायकी में भारतीय उपमहाद्वीप के आखिरी स्तंभ थे, उनकी आवाज में एक चैन था। पहली बार मैंने उनको अमिताभ बच्चन के घर पर सुना था, उस LP की पहली ही नज्म थी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।
बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो।
बात निकली और वाकई दूर तलक गई। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
आपको आज की विवेचना कैसी लगी हमें ज़रूर लिखेगा और आप इस विवेचना को दोबारा सुन सकते हैं विश्व भारती में सुबह 8 बजे। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद चेन्नई में एक अस्पताल में 3 दिनों में 14 मरीजों की मौत की जांच के आदेश दिए गए हैं। मरीजों के परिवार वालों का कहना है कि बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से वेंटिलेटरों ने काम करना बंद कर दिया था। कैलिफोर्निया के हमले में शामिल तशफीन मलिक को अमेरिका का वीज़ा पाकिस्तान से मिला था और वो पाकिस्तान की नागरिक थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक तशफीन को K-1 वीज़ा पाकिस्तान से जारी हुआ था। कैलिफोर्निया में बुधवार को हुए हमले में 14 लोग मारे गए थे। जर्मनी की संसद ने सीरिया में सक्रिय चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट पर सैन्य कार्रवाई के प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी मिल गई है। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।